الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. هل في مجلس من صاحب نسبت شخص کی ایک وصف بیان کیا گیا اور وہ تھا استحضار نیت، کہ جو صاحب نسبت ہوگا اس کو اپنی نیت کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہوگا، وہ نیت کو صحیح رکھنے کا ایکسپرٹ ہوگا. یعنی یہ ممکن نہیں کہ صاحب نسبت ہو اور نیکی کر رہا ہو شہرت کمانے کے لیے، یا نیکی کر رہا ہو دنیا کمانے کے لیے، مال کمانے کے لیے. ہر نیکی کے وقت اس کو اپنے دل کی طرف توجہ نصیب ہوتی ہے کہ میرا دل یہ والی نیکی کیوں کرنا چاہتا ہے. تو عام بندہ ہوگا اس کو کئی مرتبہ تو نیکی کی ترغیب یہی دی جائے گی کہ تو یہ نیکی کر لے تو اس سے تجھے بہت ہی زیادہ دنیاوی فائدہ ہوگا. جو نیکی نہیں کرتا اس کو یوں کئی مرتبہ ترغیب دی جاتی ہے کہ تجھے بڑا دنیا کا فائدہ ہوگا اس نیکی، اور پھر جا کے وہ کرتا بھی اسی لیے ہے نیکی کہ مجھے دنیا کا فائدہ ہوگا. ترغیب دینے والا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ چلو کسی بھی نیت سے فی الحال کرے تو صحیح، اور جب کرتا رہے گا نیکی تو پھر نیت بھی صحیح. مگر صاحب نسبت بندے کا یہ معاملہ نہیں کہ جی بس روانی میں نیکی کیے جا رہا ہے اور دنیا کے غرض سے نیکی کیے جا رہا ہے. اس کو 100% پتا ہے کہ وہ کس غرض سے نیکی کر رہا ہے. تو صاحب نسبت بندہ ذکر اذکار کرتے کرتے دل کا اتنا صاف ہو جاتا ہے، اس کو اپنی نیکی کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے نیت کیا ہے. اور اگر نیت نہیں موجود اور نیت صحیح نہیں ہے تو اجر بالکل نہیں. کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے عبادت کی دکھلاوے کے لیے اس نے تو شرک کیا، کتابوں میں غالباً بنو امیہ کے ایک بادشاہ کا تذکرہ ہے کہ اس نے مسجد بنائی، بہت اچھی مسجد، اور بادشاہوں والے خرچ بھی کیے اس پر، اور جب مسجد مکمل ہو گئی تو اس نے جو مسجد بنانے والے جو ورکر تھے، یا سمجھ لیں یوں کہ جیسے ٹھیکے دار جو تھا، اس سے کہا کہ مسجد کے دروازے پہ کتبہ لگا دیں کہ یہ مسجد فلاں بادشاہ نے بنائی ہے، اپنا نام کہا کہ میرا نام لکھ دو کہ یہ مسجد ان بادشاہ سلامت نے بنائی ہے. جو ٹھیکے دار کانٹریکٹر جو بھی تھا، جو ذمہ دار تھا مسجد کی تعمیر کا، اس نے کتبے پہ بادشاہ کا نام لکھ کے کتبہ جو ہے مسجد کے دروازے کے برابر میں لگا دیا کہ یہ مسجد ان بادشاہ نے بنائی. جب وہ کتبہ لگ گیا رات کو، یہ بادشاہ جو ہے جب یہ سویا اسے خواب میں اس مسجد کو دکھایا گیا جو اس نے بنائی، और वो जगह भी दिखाई गई जहां उसके नाम का कतबा लिखा हुआ था। जब उसने कतबे को देखा तो उस पे इसके नाम की बजाय किसी औरत का नाम लिखा हुआ था। सुबह आग खुली, इसको ये ख्वाब भी याद रहा, थोड़ा सा परेशान भी हुआ कि जी कतबे में तो मेरा नाम था, ख्वाब में तो किसी औरत का नाम दिखाया जा रहा है। उसने इस ख्याल को झिड़क दिया कि वैसे ही ख्वाब आते रहते हैं, क्या हुआ? अगले दिन फिर सोया, फिर ख्वाब में उसी तरह मस्जिद का दरवाजा बराबर में कतबा दिखाया गया जिस पे उसका नाम लिखा हुआ होता है, मगर ख्वाब में फिर उसी औरत का नाम लिखा हुआ। अब उठा तो परेशान कि 2 रात लगातार यही ख्वाब आया। मैं समझ रहा हूं ये मस्जिद मैंने बनाई और ख्वाब में तो ये दिखाया जा रहा है कि इस कदमे पे किसी और औरत का नाम है और किसी और मर्द का भी नहीं, किसी औरत का नाम। अच्छा, परेशान हो गया, सोच में पड़ गया, पूरा दिन सोचता रहा। अल्लाह की शान, तीसरी रात जब सोया तो फिर मस्जिद दिखाई गई, फिर दरवाजा दिखाया गया, फिर बराबर का कतबा और फिर उसी औरत का नाम। अब बादशाह उठा और उसने अपने सारे खादिमीन थे उनसे कहा कि भाई जाओ मस्जिद और उसके इर्द गिर्द इलाके में इस फला नाम की औरत के बारे में पूछो कि वो कौन है और वो क्या करती है। खादिमीन मस्जिद की तरफ गए और उस इलाके में मालूम किया कि जी फला नाम की औरत कौन है। जब पूरी जांच पड़ताल की गई तो ये खादिमीन को पता चला कि जी बिल्कुल एक औरत है, बहुत ही बूढ़ी औरत और बहुत ही गरीब औरत है, मुश्किल से उसका गुजारा होता है और मस्जिद से कुछ फासले पे रहती है, नेक औरत है, तबीयत की नेक है, बूढ़ी है और बेसहारा, कोई इतना उसके ज्यादा रिश्तेदार ये नहीं है, शोहर भी नहीं है। बादशाह को जब यह खबर मिली, बादशाह ने कहा कि अच्छा मैंने इस औरत से मुलाकात की। बादशाह खुद गया, बूढ़ी गरीब औरत जिसका कोई इतना रिश्तेदार भी नहीं, उसकी कुटिया में पहुंच गया। बादशाह, औरत ने कहा बादशाह सलामत, आप मेरे पास इस जगह पे इस कुटिया में क्या वजह बनी? बादशाह ने कहा कि अम्मा इस तरह मैंने मस्जिद बनाई है और मैं ये पूछना चाहता हूं क्या इस मस्जिद में तूने कोई हिस्सा डाला है अपना? मैंने तो यही समझा कि पूरी मस्जिद में सारा पैसा मैंने ही लगाया है, सारा खर्च मेरी तरफ से हुआ है, तूने भी कुछ लगाया है। उस औरत ने कहा बादशाह सलामत, मेरे पास तो खाने पीने को कुछ नहीं, मैं कहाँ कुछ लगा सकती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं लगाया इसमें। सच्ची बात तो यही है, मेरा दिल बड़ा करता है कि लगाती मगर क्या करूं, मैं तो खाने पीने को मैं तरसती हूँ। बादशाह ने फिर पूछा कि नहीं कुछ तो लगाया होगा, कोई खर्च किया होगा तूने? उसने कहा नहीं बादशाह सलामत, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। जब उसने कहा कि ऐसा नहीं है तो बादशाह ने फिर अपना ख्वाब सुनाया कि मैंने यूं कतबा लगाया अपने नाम का कि मस्जिद मैंने बनाई, सारा खर्च मैंने किया। और तीन रातों से यही देख रहा हूं कि तेरा नाम लिखा आ रहा है ख्वाब में इस कतबे पे, तो इसलिए तुझसे पूछ रहा था कि तूने कोई हिस्सा डाला है इसमें, जो बार बार तेरा ही नाम मुझे दिखाया जा रहा है। उसने कहा बादशाह सलामत मेरे पास इतनी इस्तेदाद नहीं, हाँ शौक जरूर था कि अल्लाह का घर बन रहा है और मेरा कुछ हिस्सा इसमें डल जाए, मगर मेरे पास इस्तेदाद नहीं। बस इतना होता था कि जब आपके घोड़े और गधे मस्जिद का सामान लेकर और मस्जिद की जो भी बजरी और मट्टी लेके यहां से गुजरते तो उन घोड़ों गधों को पानी पिला दे कि ये वो घोड़े और गधे हैं जो मस्जिद का सामान लेके मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। उसी वक्त बादशाह ने तौबा कि इसकी नीयत जो है वो खालिस थी, अल्लाह के लिए करती थी, शौक रखती थी कि मैं अल्लाह को राजी करूं, अल्लाह ने ये मस्जिद इसके नाम कर, और मैं शौक रखता था कि मेरा नाम सबको पता चले कि मैंने मस्जिद बनाई है, अल्लाह के नजदीक मेरे लिए कोई अजर नहीं। पक्की बात है जिन नेक आमाल में अल्लाह को राजी करने की नीयत में और अगराज से इंसान नेकी करता है तो फिर अजर भी कम हो जाता है। अल्लाह ताला हमें इखलास की नेमत नसीब फरमाए, खालिसतन अल्लाह के लिए नेकी करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें अपने साहिब निस्बत लोगों की सफ में शामिल फरमाए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह कफा, الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.